नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से पड़ोस योगेश। आज का हमारा विषय है पक्ष विपक्ष में एक राष्ट्र एक चुनाव, राजनीति का नया शगुफा। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भले ही अच्छा है, इसके समर्थन में दिए जाने वाले तर्क भी देश के विकास के लिए गति मिलेगी। राजनीतिक दल हमेशा राजनीति के मूड में नहीं रह पाएंगे और एक विकास को लेकर जो दृष्टिकोण है वह बन पाएगा, साथ ही देश का पैसा भी बचेगा। विचार के लिहाज से बहुत अच्छा है। इन सभी बातों को देखते हुए इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन मूल सवाल अब भी बता रहा है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज बड़े राजनीतिक दल अपने विस्तार की लालसा को रोककर राज्यों की सरकारों को उनका काम करने नहीं दे रहे। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। और ये कैसे विषय को आपने उठाया है जो सर्वमान्य विषय है, क्योंकि देश हित में उठाया गया ये विषय है, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। जी बोलिए
सर। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन के साथ साथ राजनीतिक नया शगुफा कैसा देख रहे सर?
नहीं, ये बहुत अच्छा एक विषय है और इसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि भारत जहाँ पे विशाल जनसंख्या का देश है, आप करीब देखेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में करीबन 1,43,00,00,000 जनसंख्या है, और ऐसे देश में बार बार चुनाव की प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होती है, लेकिन बहुत सारा कामकाज भी प्रभावित होता है। तो एक सुधारात्मक पहल है और इस तरह के सुधारों की हमारे भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत आवश्यकता है, और मैं इसके समर्थन में हूँ कि ये विषय, और ये विषय ही नहीं बने, चर्चा का विषय ही न बने, बल्कि ये क्रियान्वित स्वरूप में भी सामने आए। जी
सर, अभी हाल ही में देखा होगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है वे भी आज भी सत्ता में हैं, लेकिन केंद्र की हस्तक्षेप और वहाँ की जो पद्धति है और आज भी जो सत्ता चल रही है, इसको किस तरीके से देखते सर?
नहीं, ये जो हो रहा है, ये विषय, मतलब ये जो बिहार की जो घटना है
जी,
यहाँ लोकतंत्र की हत्या ही कहलाएगी
जी।
मतलब आप हर बार सत्ता परिवर्तन, मतलब दल बदल करके इस तरह से अपने सत्ता को व्यवस्थित रखने की कोशिश करते, तो ये अच्छा एक अच्छा मैसेज नहीं है। ऐसे सत्ता विरोधी, मतलब लोकतंत्र विरोधी कार्यों की मतलब बहुत ही घोर आलोचना होनी चाहिए, और इससे एक लोकतंत्र में गलत संदेश जाता है, क्योंकि आजकल इन सारी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र जो है जन कल्याणकारी न होके, जो कि एक संवैधानिक अवधारणा है लोक कल्याण की, वो लोक कल्याणकारी अवधारणा न होकर ये व्यक्तिगत अवधारणा बन गई है। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम कुछ भी कर सकते, ये इसने साबित कर दिया, और एक गलत कदम है ये। जी
जी सर। सर, केंद्रीय सत्ता का राज्यों में हस्तांतरण कैसे देखते सर?
केंद्रीय सत्ता का राज्यों में हस्तांतरण, देखिए ये बहुत पहले का सिद्धांत है, क्योंकि जब केरल में जब भारत देश आजाद हुआ और उसके बाद पहली बार 1952 में चुनाव हुए, सत्ता का निर्माण हुआ था, तो उस समय केरल में देखा गया कि जब केंद्र में अलग सरकार थी, राज्य में अलग सरकार थी, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रभाव देखने में आया है। और हालांकि हमारे यहाँ संघात्मक अवधारणा है, केंद्र की अपनी शक्तियां है, राज्य की अपनी शक्तियां है, संघ जो है 100 विषयों पे काम करता है, राज्य जो है 61 विषयों पे काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे हित भी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों काम कर सकते, जिसका उल्लेख हमने समवर्ती सूची में है। तो हमारे यहाँ संघात्मक अवधारणा है, लेकिन संघात्मक अवधारणा में कई बार केंद्र जो है बहुत प्रभावशील बन जाता है। ऐसी स्थिति में मतलब केंद्र के विरुद्ध में यदि कोई सरकार है, जैसे झारखंड में देखने में आता है, बिहार में, ये कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे राज्यपाल की शक्तियों का मतलब कहीं ना कहीं केंद्र के द्वारा दुरुपयोग किया गया, और इसका कई बार विरोध भी हुआ है, और ये उचित नहीं है। हमारे यहाँ संघात्मक अवधारणा है, और हमको जन कल्याण की भावना को संविधानिक व्यवस्था, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि संविधान है, क्योंकि देश संविधानिक व्यवस्था के अनुरूप चलता है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम नहीं चला पा रहे, तो हमको कोई मतलब इस बात का आशय होना चाहिए कि हम मतलब हम गलत कर रहे हैं, हमको इस व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है।
जी सर। सर स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम मानी जाती है सर, पर
नहीं, अभी तो
वर्तमान
इलेक्शन
में
में
सर इसको लेकर जो जिस तरीके से केंद्रीय सत्ता और अपने एजेंसियों का जिस तरीके से उपयोग करके जो आज विपक्ष के जो प्रतिनिधियों पर जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से जो प्रक्रिया चल रही है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया सर?
नहीं, ये देखिए विपक्ष का बहुत महत्व है, लेकिन हमारे आजादी के बाद की एक विडंबना देखिए कि जिस पार्टी का गठन 1885 में यो ह्यूम ने किया था, जिसके पहले अध्यक्ष व्योमचंद्र चंद्र बनर्जी थे, आज उस पार्टी की व्यवस्था की यह हालत है कि विपक्ष बनने के लिए जो एक आधार चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान मतलब संसद में जो 545 सदस्य है उसका जो 10% लगता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन ये एक अच्छी भी बात है कि किसी एक पक्ष को पूरी तरह से बहुमत देके सत्ता के शक्ति का केंद्रीकरण तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे निर्णय लेने की क्षमता, विकास की क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय देखा गया था कि 24 दलों का गठबंधन था, तो ऐसी स्थिति में सशक्त निर्णय लिए जाने में बहुत दिक्कत ही होती है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है वो ऐसी स्थिति में सशक्त निर्णय लेने में, और हाँ ये एक अलग बात हो रही है कि थोड़ा सा जो एजेंसियां है, राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। यदि सार्थकता सही है, यदि उद्देश्य सही है तो ठीक है, लेकिन मिसयूज होता है तो फिर ये एक दुराभाव के अंतर्गत की गई कार्रवाई कहलाएगी, इससे विरोधाभासी स्थितियां बन जाएगी और लोगों का विश्वास उठ जाएगा सत्ता से, सरकार से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह से कोई मतलब गलत व्यू में काम नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष का महत्व बहुत है, क्योंकि विपक्ष ही हमारे संसदीय व्यवस्था में, हमारे लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्व है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की संख्या घट रही है, तो ऐसे इसमें अस्तित्व पे उसके अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह बनते जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए जो कांग्रेस है वो अपने विपक्ष को बनने के लिए जितनी सीटें चाहिए वो भी नहीं ला पा रही है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एक विचारणीय पहलू बनता है। जी
जी सर। सर हाल ही में करप्शन सर्वेक्षण इंडेक्स में भारत 2023 में 93 स्थान पर करप्शन में आ चुका है। सर ये रिपोर्ट जब हाल ही में आई है, तो सर इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते सर आप?
नहीं, रिपोर्ट तो देखिए, मैं आपको एक एशियन ड्रामा एक किताब थी गुन्नार मेडल की, तो उस किताब में भी इस बात का बहुत पहले उल्लेख हो चुका है कि भारत जो है मतलब करप्शन की स्थिति में। और देखिए कल हम लोग महाराष्ट्र में गए थे विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के लिए बच्चों को लेके, तो मैं देखा कि वहां की जो पुलिस व्यवस्था, मतलब वहां की जो पुलिस व्यवस्था को देखा कि गाड़ी के सारे कागजात होने के बाद भी वो मतलब आपसे वसूल रहे, मतलब वसूली कर रहे हैं, और उस वसूली में भी एक बात देखने में आया कि सरकार के कोटे में कुछ राशि जाती है और कुछ राशि को पुलिस वाले व्यक्तिगत तौर पर रखते हैं। तो मैं ड्राइवर से कहा तो ऐसा क्यों, तो बोले वो कटता ही है। तो मैंने कहा कटता है मतलब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं गलत चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। भाई चालान यदि आपको लगता है कोई कागजात नहीं है कोई कुछ है तो ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी महाराष्ट्र पुलिस, क्योंकि हम लोग का पड़ोस में महाराष्ट्र है और हम लोग का ज्यादातर यातायात परिवहन जो है महाराष्ट्र में होता है, तो देखा खुलेआम वहां की पुलिस करप्शन करती है, रिश्वत लेती है। बात मध्य प्रदेश की करूं तो हमारे संसद तहसील के तहसील ऑफिस में जाइए, वहां पे कई लोग ऐसे गणमान्य नागरिक बैठे हो कई सालों से, जहां पे खुलेआम रिश्वत होती है, प्लॉट की जो रजिस्ट्री होती है वहां पे, तो रजिस्ट्रार के बाजू में एक रजिस्टर रखा रहता है, उसमें एंट्री होती है। मैंने कहा था मेरे प्लॉट लेते समय कि साहब एंट्री किस बात की, मतलब वो कह रहे थे कि 2,000 रुपया मेरे से एक्स्ट्रा लिए थे। तो वहां कोई एक शर्माया शुक्ला थे, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है, गायत्री परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति, वो सेंडी वेंडी रखते हैं, तो मैं देखा कि खुलेआम वो रिश्वत लेते हैं। और मैंने जब विरोध किया तो फिर मैंने अपनी रिश्वत मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम था किस बात का, लेकिन मैंने उनसे पैसे अपने वापस किए और सबसे कहा कि आप पैसे मांगिए। तो वो अर्जुन से लेकर वो सारा सिस्टम जुड़ा हुआ। अब देखिए मोदी सरकार, मोदी जी ने कहा कि मैं वैज्ञानिक तरीके से सारा कर रहा हूँ, पर मैंने देखा कि इन्होंने पूरी खामियां बना के रखी। आज भी जाइए संसद में जो रजिस्ट्री होती है वहां पे देखिए कितना करप्शन होता है, खुलेआम होता है, बगैर और हेलमेट के नाम पे जो चेकिंग होती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि रेत के टंपर जो इतने बड़े बड़े भर के जाते हैं, उनके पीछे नेम प्लेट नहीं लगी रहती है, बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता, और हेलमेट के नाम पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब आपने एक सरकार प्रशासनिक स्तर पे सरकारी तौर पे अवैध वसूली का एक धंधा कर दिया। पुलिस वालों का व्यवहार देखिए, पुलिस थाना सोनसर में जो दुर्गेश सिंह है, वो अखिलेश यादव जी है, इनकी व्यवस्था देख के तो लगता है सब्जी वालों से भी फुकट में सब्जी मांगते। अब देखिए ये हालत है हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस की भी, और रिश्वत का इतना बड़ा गढ़ बन चुका है कि रात को जो ट्रक चलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, किसकी साठगांठ है इसके साथ, पूरे अवैध धंधों को बढ़ावा देते तो साफ भ्रष्टाचार क्यों नहीं बढ़ेगा, भारत क्यों भ्रष्टाचार की लिस्ट में नहीं आएगा। मैं अपने स्थानीय स्तर की बात करूं जिसको मैं जानता हूं
जी,
और इससे कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया, तो ऐसा लगता है कि हम केवल मतदाता है, हमारा काम सिर्फ मतदान करना है, बाकी रिश्वत भ्रष्टाचार ये केवल आलोचना का विषय। हालांकि कहते हैं कि आलोचना नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सत्य दिखता है वो कहना भी चाहिए। जी
जी, तो ये एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर एक राष्ट्र एक चुनाव राजनीति का नया अस्त गुफा इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। मधुकर सर, मोबाइल वाणी को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी, धन्यवाद सर।
मोबाइल वाणी से योगेश, धन्यवाद।